أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين ناظرین کرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ پروگرام کو آپ اتنا پسند کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ کے ایس ایم ایس ہم تک پہنچتے ہیں، جو واٹس اپ کے ذریعے آپ کے میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں، وہ واقعا ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی یعنی آپ کے اس رہنمائی کے زیر اثر ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین ہماری گفتگو پروگرام میں ہوتی ہے اسلامی احکام کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے، اور اس میں پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ایک موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی میت کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کا ہمارے مہمان جواب دیتے ہیں۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور آج پروگرام میں ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب اللہ، جو آپ کے لیے آشنا ہیں، آپ اکثر ان سے پروگرام کے ذریعے سے اور بھی دوسرے ذرائع سے آپ ان سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
جی میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بیان احکام کی توفیق دی، اور اسی طریقے سے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے احکام کے زمینے کو فراہم کیا تاکہ وہ احکام الہی کو جانیں، اور میں تمام ناظرین کرام کی خدمت میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑے ہی انہماک کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات پوچھ رہے ہیں، اور سوال تو ایک انسان کرتا ہے لیکن اس کا جواب پھر پوری دنیا کے ناظرین
دیکھتے ہیں۔ ثواب جاریہ ہے یہ سب کے لیے۔
بالکل، خداوند عالم ہماری طرف سے یہ ایک مختصر سی توفیق ہے اور مختصر سی عبادت ہے جو قبول فرمائے، اللہ آمین۔ حضور اجازت دے تو ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ حضور ایک سوال کیا گیا ہے، یہ احکام میت کے حوالے سے مختصر سے کچھ سوالات ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ پوچھا گیا ہے اگر کوئی شخص مثلا مسلمان ہے لیکن وہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، 12 اماموں کا قائل نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، تو ہمارے جو یعنی شرعی نقطہ نظر سے اس کو بھی اسی طریقے سے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، دفن کیا جائے گا، یعنی واجب ہے، یا اس کے ساتھ مثلا کس طریقے سے غسل و کفن ہوگا اس کا؟
دیکھیے فقہی نقطہ نظر سے ہمارے تمام فقہا کا بالاتفاق فتویٰ یہ ہے، اگر کسی مسلمان کی میت پڑی ہوئی ہے، چاہے یہ میت زندگی کے عالم میں 12 اماموں کو نہ مانتی رہی ہو،
یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کو نہیں مانتا
لیکن چونکہ مسلمان ہے لہذا تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ اسے غسل دے، کفن دے، دفن کرے اور نماز میت اس کی ادا کرے۔
اللہ اکبر، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ،
کوئی فرق
تمام مسلمانوں کے
سلسلے میں کوئی فرق نہیں۔
جی بالکل۔ حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس بات کو جانتا ہو کہ میت کا مثلا غسل باطل تھا، یا نماز اس کی جو ہے صحیح نہیں تھی، یا نماز نہیں پڑھی گئی ہے، یا دفن میت جو ہے وہ صحیح نہیں تھا اور اس کو دفن کیا گیا ہے، کوئی انسان اس کا علم رکھتا ہے، یقین ہے اس کو، تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟
دیکھیے چونکہ میت کے یہ احکام جو آپ نے بیان کیے، چاہے وہ غسل ہو، کفن ہو، نماز میت ہو، دفن میت ہو، یہ ساری چیزیں واجب کفائی ہیں۔ یعنی اگر ایک گروہ یا ایک آدمی اس فعل کو انجام دے دے تو دوسروں سے یہ چیز ساقط ہو جائے گی،
صحیح،
اور اگر کوئی انجام نہ دے تو سب گنہگار ہوں گے،
بے شک۔
اگر ہم کو اس بات کا علم ہے کہ اس میت کا غسل یا کفن یا دفن وغیرہ غلط طریقے سے دیا گیا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو دوبارہ غسل دیں، دوبارہ کفن دیں، یا اگر دفن بھی غلط طریقے سے کر دیا گیا ہے اور قبر کھودنے میں حتک حرمت نہیں ہے، یعنی حد کی حرمت
توہین نہیں ہو رہی،
توہین نہیں ہے، تو اس صورت میں واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم دوبارہ اس کو غسل دیں، کفن دیں وغیرہ وغیرہ،
یعنی قبر سے دوبارہ نکالا جائے گا، اس کو غسل و کفن دیا جائے گا، پھر دفن کیا جائے گا،
پھر دفن کیا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ حضور ایک سوال یہ کیا ہے، دیکھیے ہماری گفتگو اب تک جو رہی ہے وہ غسل کے حوالے سے تھی، غسل کو الحمدللہ بہت یہاں تفصیلی طریقے سے بیان کیا گیا، تو اب کفن کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں۔
ایک نقطے کی طرف ہم اشارہ یہاں کر رہے ہیں،
جی بسم اللہ،
कि अगर गुस्ल गलत दिया गया है,
जी
या मसलन कफन जो है गलत तरीके से पहनाया गया है,
जी
या दफन जो शरीयत में हुक्म है उस तरीके से नहीं कराया गया है,
जी
लेकिन फकत नमाज के लिए बास फुका का नजरिया यह है कि दफन के बाद आप कब्र को नहीं खोद सकते,
सही
वो
बात
आदमी जिसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ी गई है
जी
या बातिल तरीके से नमाज पढ़ी गई है उसकी कब्र पर जाकर भी नमाज अदा कर सकते
हाँ,
हैं।
नमाज पढ़
जी
सकते हैं
जी
उसके कब्र पर। तो हुजूर कफन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे
जी
कि कफन कितने कपड़े जो है वो जरूरी हैं मैयत को
जी
देना।
कफन के लिए फुकहाए इज़ाम फरमाते हैं कि तीन पारचों की ज़रूरत है।
जी
एक पारचा जो बतौरे लुंगी बांधा जाता है,
तीन कपड़े दिए जाएंगे
जी तीन
जी
पारचे तीन कपड़े,
जी
एक है बतौरे लुंग या लुंगी जिसे कहते हैं अपने उर्दू में,
सही
इस तरीके से बांधा जाएगा जो नाफ से लेके जो है जानू तक होगी, लेकिन
जी
बेहतर यह है कि वो जो है पैर के आखिरी सिरे तक पहुंच जाए।
जी
दूसरा पारचा जो है कुर्ते की शक्ल में, पैरान की शक्ल में, जो शाने से शुरू हो
जी
और जो है साख तक है, यानी पिंडली आधी
पिंडली तक
पिंडली तक,
जी
लेकिन बेहतर यह है कि यह भी पैर तक
पहुंच
पहुंच
जाए
जाए।
जी।
तीसरी वो चीज़ जो पारचे के
ये
तौर
जो
पर
आप
दी
बेहतर
जाती
फरमा
है
रहे हैं यानी मुस्ताहब है
ये
ये
मुस्ताहब है,
जी, वाजिब जो है वो पिंडली तक है
पिंडली
सिर्फ,
तक आधी पिंडली से कहते
आधी
हैं
आधी
निस्फ
पिंडली तक
साख।
जी
और तीसरा पारचा जो वाजिब है एक ऐसी चादर
जी
जिसको जिसको फारसी में सरतासरी कहते हैं,
जी
जो सर से शुरू हो और पैर पे खत्म हो
सही
और इतनी मिकदार में हो कि दोनों तरफ का सिरा जो है बांधा जाए तो
जी,
दिक्कत पेश ना आए,
उसको बांधा जा सके आसानी
जी
के साथ
आसानी से बांधा जा सके।
जी
ये तीन पारचे मुस्तहब हैं,
जी
बकिया इसके अलावा ये तीन पारचे
वाजिब
वाजिब
है जी,
हैं,
ये तीन कपड़े
इसके
वाजिब हैं
अलावा
उसमें
जो है बकिया सारे
जी,
कफन जो हमारे माशरे में
जो
मसराए
राइज
जाए,
हैं जी जी
ये अमामा है, तातुल हनक का निकालना है,
जी
ये सब सारी चीजें जो है मुस्तहब है।
जी लेकिन कम से कम इतना जरूरी है
जी वाजिब तीन चीजें फकत है,
जी
लुंगी है, कुर्ता है
सही
और एक ऐसी चादर जो
जी
इंसान को सर से लेकर पैर तक ढांपते।
जी हुजूर, ये सवाल किया गया है एक, क्योंकि हमारी जो इससे पहले गुफ्तगू चल रही थी वो हम सिर्फ नाज़रीन के सवालात लेते थे
जी
और उसमें जो मैयत के हवाले से सवालात थे उनको हमने रोक दिया था।
जी
आज इसलिए हम ये कुछ गैर मुरत्तब भी सवालात हैं लेकिन हम
जी
आपसे जानना चाहेंगे। एक
खिदमत
सवाल
करता
किया गया है कि अगर कोई मालदार औरत मर जाए,
जी
खुद यानी खूब मालदार है, काफी
जी
मालदार है, लेकिन उसका शौहर गरीब है, तो इस औरत को जो कफन दिया जाएगा वो उसके माल से दिया जाएगा या शौहर ही के ऊपर वाजिब है कि शौहर जाए और उसके कफन को फराहम करे।
जी
जी
देखिए मसला शरी के तहत औरत चाहे जितनी मालदार हो
जी
अगर वो मर जाए तो उसका शौहर
जी
उसका कफन देगा,
सही
यानी औरत का कफन शौहर के ऊपर वाजिब है,
जी
खुद औरत के ऊपर वाजिब नहीं है,
जी
चाहे जितनी मकदार में उसके पास पैसा हो।
जी
ये है मतलब फिकी नुक्ता नजर से।
जी सही हुजूर, एक सवाल ये हुआ किया गया है कि अगर मैयत को कफन देने के बाद कफन नजिस हो जाता है, वो
जी
दोनों सूरतें चाहे बाहर से निजासत आई है या खुद उसके जिस्म के अंदर से निजासत खारिज हुई है, तो यहां क्या जिम्मेदारी, क्या किया जाएगा?
देखिए अगर मैयत का कफन जो है मतलब ताबूत में मैयत को अभी रखा आपने,
जी
वो कफन जो है नजीस हो गया, खुद मैयत के जिस्म से नजासत निकली
जी
मतलब खून निकल आया, या बाहर से कोई नजासत जो है मैयत के जिस्म पर यानी कफन पर पड़ गई,
जी
दोनों सूरतों में वाजिब और जरूरी है
सही
उस नजासत को जायल किया जाए,
जी
चाहे मतलब धुलने के जरिए से,
जी
और अगर धुलना मुमकिन नहीं है तो उस अज को यानी
उस
उस
हिस्से को
कपड़े
काट दिया
को
जाएगा
हिस्से के, हाँ कपड़े के हिस्से को
जी
कत कर दिया जाए,
सही
और अगर मुमकिन हो तो एवज कर दिया जाए,
जी बिल्कुल।
ये तीनों सूरतों में इंसान को अख्तियार है।
हुजूर इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसमें नाजरीन आपसे खुद सवालात करेंगे और वो व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, बराह रास्त कॉल भी कर सकते हैं, तो इजाजत दीजिए उस हिस्से को शुरू करते हैं।
हाजिर खिदमत
नाजरीन आप हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं और उम्मीद यह है कि प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम राह ज़िंदगी में फिर से आपका खैर मकदम है, हमारा साथ दीजिए, अपनी गुफ्तगू को मेहमान के साथ आगे बढ़ाते हैं और इसमें आप ही के सवालात होंगे। हमने आपसे गुजारिश की थी कि आप व्हाट्सअप के जरिए हमें सवाल भेज सकते हैं और अगर लिखने में मुश्किल हो रही है, टाइप करने में आपको मुश्किल हो रही है, चूंकि मोबाइल में टाइप करना सख्त होता है, तो व्हाट्सअप में जो रिकॉर्डिंग का बटन है आप उसको यानी ऑन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए अपने सवाल को और हमें भेज दीजिए, वो आपके लिए भी आसान है और हमारे लिए भी आसान है। चूंकि मुश्किल जो हमारे लिए होती थी वो ये थी कि मसलन आप उर्दू के सवालात होते थे और रोमन में टाइप करते थे, इंग्लिश में تو کبھی لکھنے میں مشکل ہوتی تھی، کبھی سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن جب آپ اپنی آواز میں بھیجیں گے تو پھر آپ کے سوال کو آپ ہی کی آواز میں یہاں پر نشر کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان کے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ حضور، ایک سوال کیا ہے علی نقی صاحب نے کرگل سے، ان کا سوال ہے کہ قضا روزہ ادا کرنے کے درمیان اگر بھولے سے کچھ کھا لیا جائے تو کیا حکم ہے، کیا روزہ صحیح؟
جی، روزے کے اندر چاہے وہ قضا کا روزہ ہو یا ماہ رمضان کا روزہ ہو یا مثلا نذر و عہد کا روزہ ہو، بھول چوک سے اگر انسان کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔
جی حضور، جو ریکارڈڈ سوالات ہم تک پہنچے ہیں، اجازت دیجئے ان میں پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، جو ریکارڈڈ سوالات آپ میں سے ہم تک پہنچے ہیں ہمارا ساتھ دیجئے، اس کو سنتے ہیں۔
سلام، کیا استحاضہ میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟
سوال ہمارے لیے واضح نہیں ہے، کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ بتائیں سوال کیا ہے۔ سوال کیا گیا ہے حضور کہ کیا استحاضہ میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی دیکھیں، استحاضے کی تین قسمیں ہیں،
جی،
قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔
جی
استحاضہ قلیلہ میں کوئی حرج نہیں ہے، صد در صد بغیر غسل کے عورت جو ہے روزہ رکھے۔
جی
استحاضہ متوسطہ میں، جس کی تفصیل جو ہے رسالہ عملیہ میں بیان کی گئی ہے،
جی
عورت کے لیے لازم ہے صرف اذان صبح سے پہلے غسل کرے۔
جی
لیکن استحاضہ کثیرہ میں جی اسے تین غسل کم از کم کرنے پڑیں گے۔ ایک غسل جو ہے نماز عشاء کے بعد، اگر دوسرے دن وہ روزہ رکھنا چاہ رہی ہے۔
جی
دوسرا غسل اذان صبح سے پہلے۔
جی
تیسرا غسل نماز ظہر سے پہلے۔
صحیح،
یہ تین غسل ہے۔
جی
اگر دوسرے دن کا روزہ رکھنا چاہ رہی ہے
جی
تو پھر نماز عشاء کے بعد بھی اسے غسل کرنا پڑے گا۔
یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غسل کرے،
یہ کثیرہ۔ جی
کثیرہ یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے گی لیکن غسل روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ رکھنے میں کوئی
اگر قلیلہ ہے تو اصلا غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جی بالکل،
متوسطہ ہے تو صرف یہ غسل،
جی
اور کثیرہ ہے تو تین غسل کرنے،
جی حضور ایک سوال اور ہے، پہلے ریکارڈڈ سوالوں ہی میں سے پہلے ایک سوال اور لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا دوسرا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی
السلام علیکم، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید کر رہی تھی اور اب میں رہبر معظم کی تقلید کرنا چاہتی ہوں تو کیا اس کی اجازت ہے؟
جی حضور، یہ سوال جو ابھی ان خاتون نے پوچھا، مرتضیٰ کشمیر صاحب ہیں کشمیر سے،
جی
انہوں نے بھی سوال اس طریقے سے پوچھا تھا کہ میں ایک مرجع تقلید کی تقلید کرتا ہوں اور میں پھر مثلا آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتا ہوں، کیا میں کسی دوسرے مرجع کی طرف ان کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتا ہوں، تو اس کے شرائط کیا ہیں اور کس طریقے سے کر سکتا ہوں، اس کی تفصیل آپ بیان کیجئے۔
دیکھیے فقہی لحاظ سے بنابر احتیاط واجب،
جی
انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک مجتہد کی تقلید چھوڑ کے دوسرے مجتہد کی طرف جائے،
جی
جبکہ یہ دونوں مجتہد مساوی ہوں علم میں،
جی علم میں مساوی
ہیں، جی لیکن اگر انسان کسی مجتہد کی تقلید کر رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا جس کی میں تقلید کر رہا تھا یہ عالم نہیں ہے بلکہ مثلا فلا صاحب جو ہے وہ عالم ہے،
یعنی فلا ان سے زیادہ علم جو ہے وہ فلا رکھتے ہیں،
ہاں دوسرے کے پاس علم زیادہ ہے،
جی
تو اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب ہو جائے گا،
جی
کہ اس مجتہد کی تقلید کو چھوڑ کے،
جی
دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ البتہ بعض فقہاء نے یہاں یہ اجازت دی ہے،
جی
کہ غیر عالم کی تقلید پہ باقی رہے،
جی
جہاں تک غیر عالم کی نظر اور عالم کی نظر ایک ہے،
جی
غیر عالم کی تقلید کرتا رہے،
صحیح
لیکن جہاں سے غیر عالم مثلا دوسری چیز کہہ رہا ہے،
جی
اور عالم دوسری چیز کہہ رہا ہے،
صحیح
تو اس مسئلے میں فقط وہ عالم کی طرف رجوع کر لے،
در حقیقت وہ عالم ہی کی تقلید ہو جائے گی،
جی
چونکہ ان مسائل میں بھی یہ عالم ہی کی نظر کے مطابق عمل کر رہا ہے،
جی سب ملا کے اگر مساوی ہے،
جی
تو اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ انسان ایک مرجع تقلید کو چھوڑ کے،
جی
دوسرے مرجع تقلید کو انجام دے۔
صحیح بالکل۔ حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہوں، ہمیں مجلس پڑھنی ہو تو کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں، یا روزہ چھوڑنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور کفارے کا سبب بنے گا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔
جی دیکھیں، صرف مجلس پڑھنے کے لیے انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے،
جی
چونکہ خود ज़ाहिरन जी कोई आलिम दीन है या मौलवी साहब हैं जिन्होंने सवाल किया है,
जी, या
इमाम
खतीब जाकिर हैं,
जहाँ खतीब व जाकिर हैं,
जी
खुद इमाम हुसैन ने जो है 3 दिन की भूखो प्यास में खुतबा दिया है।
जी
इंसान कम से कम इमाम हुसैन के नाम पे इतना बर्दाश्त कर ले
जी
कि माह रमजान में रोजा भी रखे
जी
और रोजा के अलावा जो है मजलिस पढ़ना जो है वो
जी
भी उसके बस में होना चाहिए।
जी बिल्कुल
अलबत्ता अगर जानबूझ के रोजा छोड़ दे तो
जी
इस आदमी के लिए कजा के अलावा कफारा भी अदा करना पड़ेगा। मसलन एक गुलाम आजाद करे
जी
या 60 मिस्किन को खाना खिलाए
जी
या 2 महीने पै दर पै रोजा रखे।
जी बिल्कुल
अलबत्त एक नुक्ता यहाँ पास है,
जी
अगर कोई इंसान जानता है कि मेरे बस की बात नहीं है
जी
कि मैं हालत सौम में रोजे की हालत में मजलिस पढ़ सकूं
सही
और मजलिस पढ़ना भी मेरे लिए जरूरी है,
जी
इस्लाह माशरा जो है
जी
वाजिब है, तो इस सूरत में बेहतर है ऐसे इंसान के लिए कि
जी
वो 8 फरसा का सफर कर ले,
जी
यानी 44 किलोमीटर का इरादा करके वो निकल जाए,
जी
चाहे आधा घंटे के अंदर जो है वो
जी
मसाफत तय करके वापस आ जाए,
जी
इसका रोजा कसर हो जाएगा।
हाँ, यानी ऐसी सूरत में इसके ऊपर रोजा रखना वाजिब ही नहीं
जी
है।
रोजा कसर हो जाएगा, अब ये मजलिस भी पढ़ सकता है
जी
और गुनहगार भी नहीं
नहीं
होगा।
होगा, जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा रास्ता भी बता दिया। हुजूर इजाजत दीजिए एक सवाल और देखते हैं, जो रिकॉर्डेड सवाल आते हैं उनमें से।
औरतों के लिए शरी तौर पर नामहरम से पढ़ने के वक्त पर्दा जायज है कि नहीं?
जी हुजूर, सवाल यह है कि यानी जब कोई टीचर है पढ़ाने के लिए मसलन आता है, अगर वो मर्द है और लड़कियों को या ख्वातीन को पढ़ा रहा है, तो उस सूरत में क्या उस्ताद से भी पर्दा वाजिब
जी
है?
जी पर्दा जो है तमाम नामहरम
जी
अफराद से वाजिब है,
जी
यानी ये औरत चाहे तालिबा ही क्यों ना हो
जी
और अगर कोई नामहरम इसको दर्स दे रहा है, क्लास दे रहा है,
जी
तो इसके ऊपर वाजिब है कि शरीयत में जितना पर्दा बयान किया गया है
जी
अपने आप को हिजाब में रखे।
सही
अलबत्त गलतफहमी ना हो जाए, बाज लोग समझते हैं कि सिर्फ औरतों पे पर्दा वाजिब है,
जी
जी नहीं,
जी
मर्दों के ऊपर भी पर्दा वाजिब है,
जी
बल्कि कुरान ने जब पर्दे के मामले को छेड़ा तो पहले मर्दों को मुतवज्जे किया,
जी
या आए मेरे पैगंबर कुल लिलमोमिनीना यगुज्जु मिन अबसारिहिम,
जी
मोमिनीन से कह दीजिए वो मोमिनात से अपनी नजरों को झुकाए रखें।
अल्लाहू
उसके
अकबर,
बाद दूसरी आयत में कहा गया कुल लिलमोमिनाते यगुज्जुना मिन अबसारिहिन्ना,
जी
ऐ रसूल मोमिनात से भी कह दीजिए
जी
वो भी अपनी नजरों को झुकाए रखें। तो
सही
सब मिला के मर्दों के ऊपर भी वाजिब है कि नामहरम औरतों की तरफ निगाह ना करें, और औरतों के लिए भी वाजिब है कि नामहरम मर्दों से अपने आप को छिपाए रखें जितना शरीयत में बयान किया गया
जी
है।
बिल्कुल। हुजूर सवाल किया है सलीम अहमद साहब ने कश्मीर से, सवाल पूछ रहे हैं कि जो बाप की नमाज बड़े बेटे पर वाजिब है उसको किस तरीके से अदा किया जाएगा?
अगर इनका मकसद ये है कि उसकी नियत क्या होगी, तो देखिए इस तरीके से नियत करें, मसलन नमाज सुबह को अपने वालिद माजिद की तरफ से अदा कर रहा है तो यूं नियत करें,
जी
मसलन 2 रकात नमाज अपने वालिद माजिद की पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्ला,
जी
खूब, और इंसान जो है मसलन उसे यकीन है कि मेरे वालिद माजिद की 1 साल की नमाज छूटी है,
जी
तो वो सुबह से शुरू करे या जोहर असर से शुरू करे
जी
या मगरिब ईशा से शुरू करे, इस लिहाज से कोई फर्क नहीं है।
सही
मसलन इंसान 1 साल तक फकत पहले नमाज सुबह अपने वालिद की अदा करे,
जी
फिर 1 साल तक नमाज जोहर और असर को अदा करे,
जी
1 साल तक मगरिब और ईशा को अदा करे, ऐसे भी हो सकता है
जी
और ऐसे भी हो सकता है कि हर रोज की नमाज जो है मतलब सुबह सुबह जोहर असर और मगरिब और ईशा को एक साथ जो है अदा करे।
जी बिल्कुल, शुक्रिया हुजूर। एक सवाल और अगर इजाजत दें हम तो जो रिकॉर्डेड सवाल आते हैं उनमें से लेते हैं, उसके बाद अपना ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। जी
मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि तोहफे या हदिया पर खुम्स निकालना वाजिब है या नहीं?
जी
ये सवाल वाजे है।
जी
देखिए सब मिला के यहाँ आप तकलीद किसकी करती हैं? अगर आप रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्ला खामनाई की मुकल्लदा हैं
जी
तो वो फरमाते हैं तोहफे हदिये पर खुम्स वाजिब नहीं है
जी
बल्कि मुस्तहब है, यानी कि हराम है।
जी जी
हाँ, और तोहफा हदिया जैसे ही मिला फौरन खुम्स नहीं निकाला जाएगा
जी
बल्कि ये साल की दरामद में शुमार होगा और अखराजात के बाद अगर
जो
आखिर
साल की
साल
इनकम है
में,
उसमें इसको भी माना जाएगा,
हाँ इसको
दूसरे
ही माना
जैसे
जाएगा,
मुनाफे हैं जी।
आखिर साल में जब आप खुम्स निकाल रहे हैं
जी
अगर इसके अंदर भी बचत हो रही है तो आप पांचवा हिस्सा निकालिए।
जी
अलबत्ता आयतुल्ला सिस्तानी ये फरमाते हैं
जी
कि तोहफे और हदिये पर खुम्स वाजिब है, यानी साल जब मुकम्मल होगा
जी
आप पे मुस्तहब नहीं है बल्कि आप पे वाजिब है, अगर बच गया है ये तो इसका पांचवा हिस्सा निकालिए।
सही
नुकता ये है
जी
कि आयतुल्ला खामनाई के नजदीक ये काम करने में मसलन तकस्सुब में
जी
शुमार नहीं होता है,
जी
यानी
यानी
दरामद में,
दरामद में
हदिया और तोहफा जो है दरामद में शुमार नहीं
जी
होता है, लिहाजा इन्होंने फरमाया मुस्तहब है आपके लिए।
सही,
लेकिन आयतुल्ला सिस्तानी फरमाते हैं ना ये भी दरामद का एक जरिया है,
ये भी एक प्रॉफिट है आपका,
प्रॉफिट है
इनकम है आपकी जी
जी। इस जहत से जो फरमाते हैं आप पे वाजिब है कि आखिर साल में इसका खुम्स अदा कीजिए,
जी
आप जिसकी भी मुकल्लदा हैं
उसके मुताबिक आप
उसके
अमल
मुताबिक
कीजिए।
जो है अमल फरमाइए।
बिल्कुल हुजूर, सवाल किया है कि क्या उस घर में नमाज अदा कर सकते हैं जिसके मालिक ने खुम्स अदा नहीं किया, या जिसका मालिक खुम्स अदा नहीं करता, क्या उस घर में हम नमाज पढ़ सकते हैं?
देखिए अगर इंसान जो है शिया इसनाशरी है
जी
और खुम्स को वाजिब भी जानता है
जी
और इस इंसान ने उस पैसे से घर को खरीदा है
जी
जिसके ऊपर खुम्स वाजिब था, तो ऐसे घर में अगर किसी इंसान को इल्म हो जाए तो
जी
नमाज पढ़ने में इश्काल है।
सही
लेकिन अगर हम नहीं जानते कि ये इंसान जो है जो खुम्स नहीं निकालता
जी
इसके ऊपर खुम्स वाजिब भी था या वाजिब नहीं था,
जी
ये घर जो उसने खरीदा है अपने मौना और अपने अखराजात में से खरीदा है जो साल के अंदर के हैं या उसके बाद की दरामद से खरीदा है,
जी
या हम इस बात को जो है नहीं जानते कि इसके ऊपर खुम्स वाजिब होने की सूरत में ये किसका मुकल्लिद था, क्योंकि
सही
बाज लोग फुका में मुस्तहब जानते हैं बाज चीजों में खुम्स,
जी
खुम्स को वाजिब जानते हैं
जी
लेकिन बाज सूरतों में खुम्स को मुस्तहब जानते हैं,
सही
लेकिन दर सूरत खुलासा ये शक की सूरत में या गुमान की सूरत में इंसान के लिए जायज है कि ऐसे घर में नमाज पढ़ ले।
जी हुजूर, नमाज ही से मुताल्लिक एक सवाल और किया गया है। आकिब अब्बास साहब श्रीनगर कश्मीर से पूछ रहे हैं कि क्या किचन में या ऐसी जगह पर जहां फ्रेम में फोटो लगे लगे हुए हों वहां पर नमाज पढ़ना सही है या नहीं?
देखिए किचन में नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है,
जी
वो जगह जहां नमाज पढ़ना मकरूह है वो हम्माम है।
सही
और दूसरा जुज जो सवाल का है जहां फोटोज लगे हुए हैं,
जी
फोटोज भी कई किस्म के हैं, कभी मसलन गैर जवातुल अरवाह के फोटो हैं
जी
यानी इंसान के अलावा मसलन दरख्त के फोटोज लगे हुए हैं,
जी किसी जानदार चीज के नहीं है,
हाँ जानदार कोई हरज नहीं है,
जी
लेकिन अगर जानदार चीज के फोटोज है मसलन इंसान का फोटो है
जी
तो ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना मकरूह है।
जी
और अगर इस कराहत को खत्म करना है
जी
तो इंसान को चाहिए फोटो फोटो के ऊपर कोई पर्दा डाल दे
जी
या उसका रुख जो है पलट दे जो
जी
सामने नजर ना आए तो ये कराहत भी खत्म हो
जी
जाएगी।
बिल्कुल हुजूर, इजाजत दीजिए, अभी हमारे नाजरीन में से कोई आपसे बराह रास्त सवाल करना चाहते हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। सलाम अलैकुम। जी अलैकुम सलाम, फरमाइए आपका इसमें शरीफ और कहां से आप कॉल कर रहे हैं?
जी मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं पाकिस्तान से कॉल कर रहा हूँ।
जी फरमाइए सवाल आपका। रब्ता मुनक़ता हो गया उनसे हमारा, अगर दोबारा रब्ता होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे, हम उनका सवाल लेंगे। तो इसके बाद सवाल यह है हुजूर, एक हमारी बहन है वो एक खातून सवाल कर रही है कि यानी कनीज फातिमा उनका नाम है, कि क्या हम शादी के बाद अपना पुराना लिबास पहन सकते हैं?
जी जी पहन सकते हैं, बल्कि आप उसी को पहनिए।
जी
सब मिला के देखिए हमारे यहाँ एक जहन ये है
जी
कि औरत जब शादीशुदा हो जाती है
बिल्कुल
तो अपने सारे अखराजात को शौहर के ऊपर जो है लाद दे, तहमील कर दे,
शायद
और
जहन में उनके ये ना हो लेकिन कुछ जगहों पे इस तरह की वाकई रस्में हैं, अफसोस के साथ कहना
जी
पड़ता है कि उससे पहले जो लिबास है उनको बिल्कुल पहनना अपने लिए ऐब समझती हैं,
ऐब
या तो
समझते
सदका
हैं।
दे देते हैं या दूसरों में तकसीम कर देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा ये गुनाह है।
नहीं, कोई
जी
गुनाह नहीं है,
जी
और सब मिला के अगर जरूरत हो
जी
तो इन्हीं कपड़ों को पहने, और शादी के कपड़ों को जो है मतलब शादी कहीं हो रही है या जश्न हो रहा है ऐसी जगहों के लिए
जैसा
रखे,
मौका हो इस तरह का लिबास
हाँ
पहने।
सब मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ शरी नुक्ते नजर से
जी
जो पुराना कपड़ा है शादी से पहले का है उसको पहनना चाहिए,
जी
और सब मिला के कुरान ने ये कहा है कि औरतें मर्दों के लिए बाइसे सुकून हैं।
जी
इन्हें औरतों को चाहिए कि इस तरीके से रहें कि मर्द को उनकी जात से टेंशन ना हो।
जी बिल्कुल
वह खला का मिनहा जौजहा लियस को ना एलैहा,
जी
तो औरतों को चाहिए बहरहाल इस तरीके से जिंदगी बसर करें कि
जी
अपने शौहर पर जो है बोझ ना बने।
जी
और यह हदीस पैगंबर में जुमला है
जी
कि बेहतरीन औरत वो है
जी
आयसरुहुन्ना मौना,
जी
जिसका खर्च अपने शौहर पे कम।
कम हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुजूर, ये बड़ा अहम नुक्ता था। एक सवाल किया है, फिरदौस हैं कोई कश्मीर से, सवाल कर रही हैं कि अगर कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और उसके माँ बाप राजी ना हो तो अब उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या करना चाहिए
माँ
उसको?
बाप को राजी करे,
जी
माँ बाप को राजी करे उसकी जिम्मेदारी है।
हाँ, माँ बाप को राजी करना।
जी
जी
अलबत्ता लड़की की शादी में बाप की इजाजत शर्त है, माँ की इजाजत शर्त नहीं है।
जी
अगर बाप जो है राजी हो जाए
जी
तो लड़की जो है बगैर माँ की इजाजत के लड़के से शादी कर सकती है,
जी
लेकिन बेहतर यह है कि माँ को भी अखलाकी लिहाज से राजी रखना चाहिए।
जी बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। अच्छा, हर लड़की के लिए जरूरी है या इसमें कुछ
नहीं,
मसलन
जो
जो
बाकिरा है,
बाकी रहा?
शादी पहली मर्तबा शादी कर रही है,
जी, अगर कोई तलाकशुदा है तो उसके
जी
लिए जरूरी
बेवा
है।
है, तलाकशुदा है,
जी
तो उसके लिए बाप की इजाजत जो है शर्त नहीं है।
जी बिल्कुल हुजूर। एक सवाल किया है, एम अकबर साहब हैं और जो उन्होंने नाम लिखा है अपने वतन का, सरगोंद या सरगोंधा कुछ इस तरह की चीज़ है, वो पूछ रहे हैं, सरगोंधा शायद है, कि इमाम बारगाह का जो पैसा बैंक में जमा रहता है क्या उस पर भी खुम्स वाजिब है?
देखिए, खुम्स जो है अपने पैसे पे वाजिब है,
जी
दूसरे के पैसे पे खुम्स आप नहीं निकाल सकते।
जी
और इमाम बारगाह के नाम पे जो पैसा जमा किया जाता है
सही
वो हमारी जाति प्रॉपर्टी नहीं है या साल की बचत नहीं है
जी
जिसका हम खुम्स निकाले,
जी
लिहाजा ऐसे पैसे पे खुम्स नहीं है।
जी बिल्कुल। अच्छा हुजूर, ये कुछ सवालात और हैं हमारे पास, देखते हैं। एक अली नकी साहब करगिल से, पहले भी इनका एक सवाल आ चुका है, वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो कुरान की आयतें जो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती हैं क्या उनको भी बगैर वजू उनको बगैर वजू के छू सकते हैं या उनके लिए भी वजू करना जरूरी है?
नहीं, आप छू सकते हैं, कोई हरज नहीं है,
जी
क्योंकि कुरान को डायरेक्ट मस करना बगैर वजू के ये हराम है।
जी
और स्क्रीन के ऊपर जो है जो आयात नक्श हो के उभरती हैं
जी
वो शीशे के अंदर होती हैं,
सही
तो इस सूरत में छूने में कोई हरज नहीं है।
जी बिल्कुल। फिर इन्हीं का दूसरा सवाल है, अली नकी साहबी का, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अली नकी साहब के इतनी दिलचस्पी से देखते हैं प्रोग्राम को और सवाल भेजते हैं, कि विलायत और इमामत में क्या फर्क है, बहुत मुख्तसर तौर पर, चूंकि हमारे पास शायद 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है।
देखिए, विलायत लाजिमा है इमामत का,
जी
यानी जहां इमामत है
जी
वहां विलायत होगी।
जी
खूब, ये विलायत जो है शरी लिहाज से सबसे पहले नबी अकरम को हासिल है। कुरान ने कहा
सल्लल्लाहु अलैहि
अन्नबी
वसल्लम,
जो अवला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम,
बेशक।
उसके बाद आइम्मे मासूमीन को ये विलायत हासिल है,
जी
और उसके बाद
जी बिल्कुल
जिनको आइम्मे मासूमीन ने नस्ब फरमाया
हुजूर,
है।
बहुत शुक्रिया, यहीं पर आपसे खुदा हाफिज़ी करेंगे, अगर जरूरत होगी तो इसके बाद वाले प्रोग्राम में शामिल होगा।
इंशाअल्लाह।
खुदा हाफिज़। नाजरीन, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत से सवाल थे आपके, हम तमाम नाजरीन के शुक्रगुजार हैं कि इस तरीके से प्रोग्राम को पसंद करते हैं और सवाल भेजते हैं। हम माजरत चाहते हैं जिनके सवाल के जवाब नहीं दे सके। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।